ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி.
जो आज की बात है बाबा की, दिल कहता है हम सब इतने संगठन में, तो ये बात थोड़ी इतनी सहज स्पष्ट हो जाए, जबकि बुद्धि में सारी नॉलेज है, तो दो चार महीने से और खास कल परसों से मूली मेरे हाथ में, आज सवेर में ये आज परी है, पर लगता है हमारा देश शांति धाम है, तो जहां के रहने वाले हैं वो नैन चैन बताते जरूर है। विश्व भर में जो जहां भी जाएंगे फौरन कहेंगे ये इंडियन है, ये इंग्लिश है, ये चाइनीज है, ये हम जहां भी पाव रखते हैं, जहां भी, तो हरे को अपने आप चेहरे से लगे ये शांति धाम के रहने वाले लगते हैं। एक सेकंड लगता है आत्मा को घर का पता चल गया, अभी पिंजरे का पंछी नहीं है, देह करके कर्म बंधनों में फंसकर पिंजरे के पंछी है बन गई, अभी आत्मा को बाबा के याद की शक्ति से विक्रमाजीत बनने का और फिर कर्मातीत स्थिति में रहने का, विक्रमाजीत बनना ही है, अब देखते हैं बने हैं, जो कोई विकल्प भी भूल से ना आए, किससे बदला लेने का ख्याल भी ना आए, जरा सा व्यर्थ चिंतन का लेस मात्र भी ना आए, साधारण संकल्प भी ना आए, और कर्मातीत स्थिति कैसी होंगी जब अगर पौत्र बन करके घर चले जाए, तो शांति धाम की याद यहाँ निमित्त पातधारी है, रहना अव्यक्त पतनवासी है, जहां हमारा बाबा तो साकार में बाबा होते हुए भी देखा है, आंखों ने देखा है, दिल ने अनुभव किया हुआ है, सदा बाबा अव्यक्त सृष्टा, इनकी ये स्थिति और शिव बाबा की स्मृति दिलाने का, तो जैसे हमारे बाबा ने किया है साकार में होते किया है, अव्यक्त होकर भी साकारी और निराकारी भाषण दे रहा है, तो मीठे मीठे बाबा ने बार बार ये कानों में मंत्र डाला हुआ है, फॉलो फादर, और कुछ नहीं है, ये कहते है उसको याद करो, वो कहते है इसको फॉलो करो, बस। तो आज के मूल्य अनुसार इतने बड़े संगठन, क्यों बड़ी खुशी की बात है, सब इतने बाबा के बच्चे की एक ही आशा है, इसलिए मधुबन में बाबा से मिलन मनाने आते हैं, ऐसी स्थिति में रहने के अनुभव करने के लिए, और सदा ऐसी स्थिति रहे हमारी तो रहे, सबकी रहे, तंग दुनिया वालों को इतने सबका साक्षात्कार होते, सबके दुख दूर हो जाए, शांति धाम में रहने के में तो सबको जाना ही है, पर तो पहले से ही उनको भी खींचे हम घर जाना है। मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत निकाल दो, सिर निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न, तुम बच्चों ने देह का देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है, किस रूप से दिखाया है? उत्तर, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या परी थी जो पहाड़ों पर برف میں جا کر شریر چھوڑیں گے؟ لا کہتا ہے ہمالیہ کے پہاڑوں پر کوئی شریر نہیں چھوڑتے، باقی تم یوگ بل سے شریر چھوڑ دیتے ہو۔ دیو بھان کو بھول اشریری بننے کی پریکٹس کرتے ہو، سارا دن یہی پریکٹس کرتے رہے۔ اوم شانتی۔ روحانی باپ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں، سمجھاتے تو ہر روز ہے، پھر بھی کئی باتیں بچے بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو بدھی میں یہ تو رکھنا ہی ہے، کیا رکھنا ہے؟ یہ سنگم یگ ہے، ہم سنگم یگ پر ہے، باپ آتے ہی ہے سنگم یگ پر۔ کلی یگ کا انت اور ستیگ آد کا سنگم گایا ہوا ہے، بلاتے بھی اس سمے ہے۔ کیوں گایا ہوا ہے؟ بلاتے بھی اس سمے ہے، پت دنیا کہا جاتا ہے کلی یگ کے انت کو، اس لیے اور کوئی ٹائم پر بلاتے بھی نہیں ہے اور باپ آئیں گے بھی نہیں۔ وہ بلاتے بھی نہیں ہے تو باپ آئیں گے بھی نہیں۔ جب کلی یگ کا انت ہوتا ہے تب وہی مجھے بلاتے ہو، بابا ہم پتتوں کو پاون بنانے آؤ، کلی یگ انت اور ستیگ کے آدمی آؤ، بلاتے ہیں پر ان کو پتا نہیں ہے، بلاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے۔ کون سا پتا نہیں ہے؟ کلب کی آیو کتنی ہے، سمجھتے ہیں؟ بھکتی کرتے کرتے دھکا کھاتے کھاتے آخر میں مل ہی جائیں گے۔ کلب کا انت کب ہوں گا یہ کس کو پتا نہیں ہے، یاد کرتے ہی تب ہے۔ اب یہ بھی اتنی باتیں بابا نے بچوں کو سمجھا سمجھا کے دماغ میں ڈالی ہے اور لوگوں کے کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ کلی یگ کا انت کب ہوتا ہے؟ ستیگ تریتا میں تو ہے ہی سکھ، دواپر میں بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے۔ کلی یگ میں جب منشیہ بہت دکھی ہوتے ہیں تب باپ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، تمو پردھان مانا دکھی، تب ہی پکاریں گے نا۔ کیا پکارنے میں کہیں گے؟ ہے دکھ ہرتا سکھ دو، دکھ کے بندھن بہت ہے۔ دکھ کے ٹائم ہی بھگوان کو پکارتے ہیں کہ اس بندھن سے چھڑاؤ۔ جب کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تو بہت زور سے پکارتے ہیں پر پھر بھی پاتے نہیں۔ جیسے بلبلایا ہوتا ہے نا، جہاں سے جاتے ہیں راستہ ملتا ہی نہیں، جب تھک جاتے ہیں پھر چلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی منشیہ جب بہت دکھی ہو جاتے ہیں تب چلاتے ہیں، ہے دکھ ہرتا سکھ کرتا، ہے اندھوں کی لاٹھی، اس سمے ہی پکارتے ہیں ہے اندھوں کی لاٹھی۔ ابھی بار بار بابا یاد دلاتے تم سنگم پر کھڑے ہو، ابھی تم سنگم پر ہو، ایک طرف ہے پانڈو اور دوسرے طرف ہے کورو۔ گیتا شروع یہاں سے ہوتی ہے، ایک طرف ہے پانڈو، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے، اندھا ان کو کہا جاتا ہے، جو رچتا اور رچنا کے آدھی مدھیانت کو نہیں جانتا ہے، سجا اس کو کہا جاتا ہے۔ जो बाप रचता द्वारा रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राजभाग मिला है, तब तो ये चित्र दिखाते हैं। सत्युग है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम ही है शिवालय। विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग के रावण से स्थापना होती है, इसलिए इसको कहा जाता है वैशाल्य। सत्युग है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को ये मालूम है अभी हम न है वैशाल्य में, फिर न है शिवालय में। अभी क्या कहेंगे, शिवालय में तो बैठे हुए हैं ना, हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशाल्य माना विकारी संबंधों से हमारा सारा ममत निकल गया है। सब बोलो, सबका निकल गया है ना, बोलो निकला है सारा ममत वैशाल्य से निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत। हम है अभी राजयोगी, वे है सब योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है। फिर भी तो निभाने के लिए रहना है, तो रहना घर में ही है। फिर भी अंदर कनेक्शन ब्राह्मणों से बहुत रहता है, क्यों ब्राह्मणों जितनी ऊंची सेवा और कोई नहीं कर सकता है। रूहानी सेवा करने बापी निमित्त बनते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम कहते हैं, उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। ये बहुत अंदर में अच्छा लगता है। वर्षा क्या मिला है, सत्य बाप, सत्य गुरु टीचर, सत्य गुरु, सत्यता का वर्षा मिला है। बाप टीचर गुरु, जैसा है बाप ऐसा है शिक्षक, ऐसा है सतगुरु श्रीमत देने वाला, उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। ये याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। पर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो वो है परलौकिक बाप, समझाने में पहले पहले कहेंगे परलौकिक बाप। वह सत्य शिक्षक भी है तो सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करते हैं, बार बार बाबा महिमा कर। वह सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य सतगुरु है, क्यों सद्धर्म की स्थापना करते हैं, मांगते हैं ना। एक राज्य हो वह तो सत्यों में होता है, यहां तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, माना एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, तो वर्ल्ड में एक राज्य हो, वन वर्ल्ड नहीं होगी, वर्ल्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता। देवताओं का राज्य था वहां, और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप आकर ऐसी राजाई स्थापन करते हैं, यह भी अभी तुम समझ गए हो। बापी राजयोग सिखाते हैं न कि श्री कृष्ण, उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है कि राजयोग सिखाया। तब जब राजधानी स्थापन करनी थी, बाकी शास्त्रों में तो है महिमा, फिर महिमा करने से कोई राजयोग सीख सकते हैं क्या? तो उसकी महिमा करो, उनसे कोई राजयोग सीख सकते हैं क्या? वह तो गीता आदि जो सुनाते हैं वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिनों को सुनाया उन्होंने तो राजपद पाया, बाकी ये जो त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उसे मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया की स्थापना होंगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक, शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। एक कृष्ण को थोड़ी ज्ञान दिया होगा, कृष्णपुरी स्थापन की होंगी। कृष्णपुरी कैसे स्थापन हुई होंगी? आत्मा को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने के लिए राजयोग सिखाया है। तुम ही फिर सत्तो रजो तमो में आते हो ना, ऐसे नहीं सत्युग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब है सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, कलयुग जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सत्युग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों? सत्युग है ही नई दुनिया। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया बदलनी है, उसके लिए ये वही महाभारी महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं जब पांडव भी थे तो पांडवों की जीत हुई, तो जरूर स्वराज मिलना चाहिए उनको। जीत हुई तो स्वराज मिलना चाहिए, तो स्वराज में आएंगे ना, शरीर करके कहां भी छोड़े। पांडव शरीर करके कहां भी छोड़े, हमसे पूछते हैं अभी तुम्हारा क्या प्लान है, भारत में शरीर छोड़ेंगे या विदेश में शरीर छोड़ेंगे? रमेश भाई कहाँ गया? रमेश भाई कहाँ शरीर छोड़ेंगे? सबको हमारी चिंता लगी है, तो कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ेंगे या भारत में विदेश में छोड़ेंगे? क्या बोलूं? यहाँ छोड़ेंगे बहने, क्या बोलते हो पंजाब वाली बहने, कहाँ छोड़ेंगे? हाँ पहले कहते थे वे, अभी तो हाँ अभी क्या सोचेंगे चक्रधारी बहन, क्या सोचे कहाँ छोड़ेंगे? भारत में छोड़ेंगे नहीं, जहां भी होंगे राजधानी सारे विश्व भर में से कलयुग को सत्युग में आना है, महाभारत की लड़ाई लगेंगी, तो मिर्वा मौत मलू का शिकार होगा, तुम डरेंगे क्या? शरीर कहाँ भी छोड़े, बहुतों ने क्वेश्चन हमारे पूछा है, बाबा ने जवाब दिया राजधानी में तो आना ही है, हमारा राजयोग पवन का, मैं तुम राजयोग सिखाता हूँ, राजयोग सीखे है, राजधानी में तो आना ही है। ला कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है, योग तो यहीं सीखते हैं, योग बल से ही शरीर छोड़ना है, कहां भी छोड़ो, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या परी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे, ये भी गपोरे हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगी सत्युग में। बाबा ने समझाया है सत्युग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर, जब शरीर बुढ़ा होता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां तो वापस शांति धाम में तो नहीं जाएंगे ना। सत्युग में शांति धाम में तो उनको नहीं जाना है ना, शांति धाम में अभी जाना है, इसलिए ये धुन लगी हुई है। अपने आप बैठे बैठे देह का त्याग कर ले गए, शांति धाम में अभी जाना है, अभी वह प्रैक्टिस की जाती है, जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। हमने ऐसे देखे है बहुत भक्ति मार्ग में भी, ऐसे बैठे बैठे देह त्याग करने वाले, यहाँ ये प्रैक्टिस कराई जाती है। क्यों? पुरानी दुनिया को छोड़ना ही है, वहां तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे, स्वर्ग में जा न सके। सत्युग में तो तब जाएंगे जब आ करके या बाप से राजयोग सीखे, तब दैवी राजधानी में अर्थात सत्युग में जा सके। राजा महाराजा का लकब तो यहाँ ही मिलता है, पद दूसरा मिलता है, पर नाम वह चलता रहता है, भूल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं, जो पैसे से भी टाइटल लेते हैं, आगे लाख दो लाख भी देते थे तो लकब मिलता था। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बस समझाते हैं, उसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको पत्र से पावन बनाओ, यहाँ बहुत दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था, पर परमपिता परमात्मा को भी आना ही है। यह चक्कर फिरता रहता है, विचार करेंगे ना, जब ऐसी बात ध्यान से बाबा की सुनते हैं, सोचते भी हैं, तो चक्कर ऐसे फिरता है, बुद्धि बड़ी शांत होती है, मजा आता है ना। परमपिता परमात्मा को आना ही है, ये चक्कर ऐसे, कितना अच्छा चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, ये अक्षर जरूर डालने होते हैं, पर बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े, एक आता हूँ, दूसरा कल्प कल्प आता हूँ, तीसरा फिर ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, तो मनुष्यों को पता पड़े ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए खुद ही कहते हैं हम पापी है, नीच है, बरोबर वैशाल्य भी है, विषय सागर है ना, विष्णुपुरी खीर सागर थी, जहां लक्ष्मी नारायण दोनों रहते थे, यह खीर सागर भेट में कहा जाता है, विषय सागर के भेट में खीर सागर कहा जाता है। बाकी खीर का सागर कोई होता नहीं है, सागर तो सत्युग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सत्युग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब ये है संगम युग। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ बुद्धि इतनी बेहद में चली जाए, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सागर, ये सब जो अभी उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, हम सब से पार रहने वाले, सारे सागर के तुम मालिक हो। सारी पृथ्वी ऐसे ऊपर से देखे, सारी पृथ्वी, सारे आकाश के तुम मालिक हो। ये है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सत्युग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा होनी ही है। अब तुम चित्र बनाते हो, अब ये बात बाबा ने बहुत अच्छी बोली है, बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की बिंदी, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है, अब तुमको लाइट कैसे देवे, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है, आत्मा को लाइट कैसे दे। लाइट देने से बड़ा बन जाता है, वह बड़ी लाइट को ही फिर पूजते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी, मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें पर पूजा कैसे करेंगे, इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, पर छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दें। कोई लिंग की पूजा करते हैं, शाहूकार होगा तो हीरा गोल बनाए उनकी पूजा करते हैं, नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज नहीं है। यह बड़ी गुई है, बातें समझने की है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, नहीं तो फिट कैसे हो। अभी तुम जैसे अपने आत्मा को जानते हो वैसे ही बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है, देखा है तो कह, परमात्मा को कैसे देखेंगे। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो तो सिर्फ देखने से फायदा क्या। यहां तो ये पढ़ाई पढ़ने की है, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है ही फ्यूचर दुनिया के लिए। ये लक्ष्मी नारायण ऐसे कर्म कैसे सीखे, कहां सीखे, संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूं। बाबा प्रदर्शनी में तार भी भेज देता है, उसमें भी ये लिखना है कि ये संगम युग है। बाप कहते हैं तार में तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग जरूर लिखना है। एक्यूरेट जो तार जाती है पर दशन में उसकी कॉपी लगा देनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है, पर नीचे लिखते हैं बाप दादा शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है, वह पिता पिता ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना, शिव तो है निराकार, उनको अपना कोई शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकार ही है, बाकी तो सबको शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर कहाँ, बंदो ऐसे तो नहीं पर मैं नाम रूप से न्यारा हूं। बहुत बातें बच्चों को क्लियर कर बाप समझाते, मैं हूं निराकार, परंतु जब मैं आता हूं तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, मैं गर्भ में भी नहीं आता हूं, मैं खुद बतलाता हूं, मैं साधारण में आता हूं, ये जिसमें आता हूं ये पहले पूज्य था अब पुजारी बना है, माला में भी है, पहले शिव बाबा फिर दो दाने प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है, जो प्रवृत्ति मार्ग में बत थे अब शिव बाबा के मत से पावन बन सृष्टि को पावन बनाया है, इसलिए यादगार माला बनी हुई है रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। कोशिश की थी माला बनाने की, बहुत बनाते थे पर कभी बनती नहीं थी, इसलिए माला बनाना और अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो यहां के थे वह नाम यहीं छोड़कर वे अपना पुराना नाम ले भाग गए, उनको उस नाम से कोई वहां बुलाएंगे थोड़े ही। तो बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, ऐसे बाप को बहुत लव से याद करना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुलवा देती है, इसलिए अब स्थान डगमग होती है, मुरझाई पने की फीलिंग आती है, अब स्थान डगमग होती है तो मुरझाए हुए लगते हैं ना, फीलिंग आती है, शिव बाबा के याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विकारी संबंधों से ममत निकाल देना है, भविष्य के लिए के भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है, दूसरा औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है, सत बाप सत शिक्षक और सतगुरु के श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान स्वयं के बाबा टेंशन कितना खींचवाते हैं, स्वयं के स्मृति द्वारा हर बोल व कर्म को संयम बनाने वाले अथाति स्वरूप भव। और कल परसों से एक बात बार बार मुख में आई, मन में पहले आती है मुख पर पीछे आती है, चार बातों के बीच में है, बाबा शिवा परिवार स्वयं, बाबा शिवा परिवार स्वयं। पहले पूछू मैं कहाँ हूं, सेवा में हूँ या बाबा के साथ हूँ, परिवार के बीच में हूँ, तो बाबा का वरदान पड़ते, स्वयं को भूल तो न जाऊं ना, इतना सारा बड़ा परिवार देखे यहाँ सेवा में मस्त तो नहीं हो जाऊं, तो बाबा के साथ रहूं, स्वयं को बाबा के साथ रहूं ना, ईश्वरी परिवार के भाग्यवान है, और बाबा है परिवार है सेवा है, तो स्वयं को क्या देखते हैं, तो बाबा कहते हैं संयम, बोल कर्म को संयम बनाने वाले अथार्थी स्वरूप भव है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथार्थी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो उल्टा कर देंगे, फांसे हो भी गया। स्वयं के स्वरूप के स्मृति में रहने से ये नशा रहता है, कोई कर्म उल्टा नहीं हो सकता है, ये निश्चय का बल नशे में रहने से कहते उल्टा नहीं हो सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं के स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वह संयम बन जाएगा या नियम बन जाएगा। स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत हो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, मीठा बाबा, बोलो मीठा बाबा, थैंक्स, इतना इतना अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाना खिलाया। हा?